الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 27 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ بما نسو یوم الحساب، یوم حساب، یوم الدین، قیامت کے دن کو انہوں نے بھلا دیا۔ اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں وقوع قیامت کہ قیامت ہونی چاہیے اس کے اوپر دو بڑی خوبصورت دلیلیں بیان فرمائیں، دونوں عقلی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ یہ آیت مبارکہ وقوع قیامت کے عقلی ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ ایک بڑی لوجیکل سی بات ہے، ایک معقول سی بات ہے کہ ہم اپنی شے اگر کسی کو دیں تو ساتھ میں اس کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ ہدایات دیتے ہیں، یا تو اس نے آلریڈی ان ہدایات کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جسے کار اچھے طریقے سے چلانی نہیں آتی، یا اسے کار چلانی آتی ہے لیکن اس کے پاس ہلکے درجے کی کار ہے، اب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی کار ہے جس کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے، یوں کہہ لے کہ مینول سے آٹومیٹک کار ہے، اس کے پاس مینول ہے، ہمارے پاس آٹومیٹک۔ اب ہم اس کو آٹو کار اگر دیں گے تو ساتھ میں اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جو اس کو ہماری اس گاڑی کے بارے میں معلومات نہیں تو اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے، اس کو چلانی نہیں آئے گی، وہ غلط اس کو استعمال کرے گا۔ تو جب دنیا میں ہم کوئی معمولی سی شے بھی کسی کو دیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس ایک جدید قسم کا آئرن ہے یعنی استری ہے، ہم وہ کسی کو دیں اور اس کو اس کا طریقہ نہ آتا ہو تو ہم اسے طریقہ ضرور بتاتے ہیں تاکہ یہ شے خراب نہ کر دیں۔ تو جب ہم اپنی شے کسی کو دیتے ہیں تو ساتھ میں اس کا طریقہ بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دنیا عطا فرما دی، ہمیں زمین میں زندگی عطا فرما دی، ہمارے لیے اللہ تعالی نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، ستارے بنا دیے، فصل اگنے کا نظام بنا دیا، بارشیں ہمارے لیے نازل کر دی، سمندر جاری کر دیے، دریا جاری کر دیے، پہاڑ بنا دیے، وسیع و عریض میدان بنا دیے، زمین سے لہلہاتی کھیتیاں نکل آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ سارا نظام دیا، اس نظام کو دینے کے ساتھ اس کے استعمال کا طریقہ اللہ کی منشا کے مطابق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، تاکہ ہم اس کے مطابق اللہ کی ان چیزوں کو استعمال کریں، اس کے برخلاف استعمال نہ کریں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یا تو وہ خدا کا وجود ہی نہیں مانتا، اور یا وہ کہتا ہے کہ کوئی شریعت نام کی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی دین نہیں ہے جو اس نے نازل کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر یہ ساری زمین، آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ بیکار ہی پیدا کر دیا، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں، بس لوگوں کو بنا دیا، آسمان و زمین بنا دیے اور کہا کہ جو مرضی کرتے رہو۔ تو اگر مقصد زندگی نہ ہو، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ بیان کیا جائے، تو پھر اس دنیا کا بنانا ایک باطل کام ہے، اس دنیا کا بنانا ایک فضول کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے یہ دنیا بنائی और इसकी इस्तेमाल करने का एक तरीका भी बता दिया, तो ये बात तकाजा करती है कि अब जो इस तरीके के मुताबिक चले और जो इसके बरखिलाफ चले, दोनों के लिए कुछ दिन ऐसा हो कि जिसमें उनकी पूछगछ हो कि किसने मालिक के कहने के मुताबिक इस दुनिया को इस्तेमाल किया और किसने मालिक के कहने के बरखिलाफ इस दुनिया को इस्तेमाल किया। तो क्यामत का दिन इस दुनिया के तखलीक के मकसद को पूरा करने वालों और ना करने वालों के दरमियान वजह फर्क होगा। तो दुनिया, इस निज़ाम का पैदा होना, ज़मीनों का, आसमानों का और इसके जो माबैन है, ये सब कुछ होना ही इस बात का तकादा करता है कि इसके लिए को इसे इस्तेमाल करने का निज़ाम भी दिया गया, और जो निज़ाम दिया गया हो अब उसके मुताबिक किसने किया नहीं किया उसकी जांच परख भी हो, उसके बारे में पूछा भी जाए, वरना निज़ाम देने का फ़ायदा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने आसमान और ज़मीन और जो इसके दरमियान है इसे फजूल और बेकार पैदा नहीं कर दिया। अब जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके नज़दीक इस दुनिया के अंदर जो चाहें कर लें, फिर इस दुनिया के अंदर कोई निज़ाम ही नहीं, अपनी मर्जी से जो चाहें इख्तियार कर लें। अगर यही है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने अपनी मिल्क लोगों के हवाले तो कर दी लेकिन उनको मकसद कोई नहीं दिया, लिहाजा ये वैसे एक फजूल सा काम कर दिया कि लोग भी बना दिया, ज़मीन भी बना दिया, आसमान भी बना दिया और का जो मर्जी करते रहो। तो फरमाया कि ये जो गुमान है कि ये निज़ाम जो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है इसमें कोई निज़ाम नहीं दिया ज़िंदगी गुजारने का और उसका हिसाब नहीं होना, ये जो गुमान है ये काफिरों का गुमान, ये खुदा के इनकार करने वालों का गुमान है, और ऐसे लोगों के लिए फवैलुल्लज़ीन कफरू मिनन्नार, इनके लिए आग से बर्बादी है। इस पूरे निज़ाम की तख्लीक का मकसद क्या है वो अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में बयान किया, जैसे हमारे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें, मेरे बंदे बन के रहें। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया खलक़ल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि यह लोगों तुम्हारी आजमाइश करें कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो अच्छे अमल करने वालों की पहचान हो जाए, उनकी परख हो जाए और बुरों का भी पता चल जाए। तो ये अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने का, इंसानों को पैदा करने का, मौत व हयात की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया। अब जो इस मकसद को नहीं मानता कि इबादत बंदगी इलाह ये मकसद तख्लीक नहीं है, आजमाइश इंसान ये मकसद तख्लीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को फजूल ही पैदा कर दिया। तो फरमाया कि हमने आसमान और जमीन और इसके माबैन को बातिल नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया, इसका मकसद है। और वो मकसद क्या है? इबादत इलाही और अच्छे आमाल करना, के कौन तुम में से अच्छे आमाल करता है। दूसरी दलील वो भी इसी से मिलती जुलती, इरशाद फरमाया अम नजअलुल लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात कल मुफ्सिदीन फिल अर्ध अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम ईमान लाने वालों और अच्छे आमाल करने वालों को जमीन में फसाद फैलाने वालों की तरह कर देंगे, या क्या हम परहेजगारों को नाफरमानों जैसा कर देंगे? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की दूसरी अकली दलील बयान की, और ये बड़ी वाज़े है, इसकी थोड़ी सी मैं मज़ीद वज़ाहत अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर एक बंदा है जिसने अच्छे काम किए, लोगों का भला किया, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, अब उससे 10 लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसकी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी, अच्छी से मुरादा अच्छे आमाल में गुजरी, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी तंग दस्ती में, गुर्बत में, परेशानियों में, बीमारियों में गुजरी, लेकिन इसके बावजूद उसने आमाल अच्छे किए, लोगों का वो खैर खा था। अब बताइए ये जो इसके अच्छे आमाल हैं, इसने जो दूसरों का भला किया, इसका बदला इसे क्या मिला? इसने अच्छे आमाल किए तो फिर क्यों किए, इसका बदला क्या है? दूसरी तरफ एक बंदा वो है कि जिसने बुरे आमाल किए, लोगों पे जुल्म किया, ज्यादतियां की, और उसकी सारी ज़िंदगी खुशहालियों में, पैसे में, माल में, दौलत में, आसाइश व आराम में, सेहत व तंदरुस्ती के अंदर गुजरी। तो बताइए कि इस बुरे आदमी के बुरे आमाल का बदला क्या हुआ? ये तो अजीब बात होगी कि अच्छे आमाल करने वाला और लोगों का खैरखा वो तो बेचारा गुर्बत की जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया, और जालिम मौज मस्ती खुशी और खुशहाली के अंदर जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुरे अमाल करने वाले को उसके बुरे अमाल का कोई बदला ना मिला, अच्छे अमाल करने वाले को उसके अच्छे अमाल का बदला ना मिला। नंबर एक। नंबर दो, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने नेकियों की जिंदगी गुजारी और उसके साथ खुशहाली की जिंदगी गुजारी, दूसरे आदमी ने गुनाहों की और जुल्म की जिंदगी गुजारी और उसने भी खुशहाली की जिंदगी गुजारी मालो दौलत वाली। तो अब बताइए कि इनके अच्छे बुरे अमाल का फर्क कहां जाहिर हुआ? नेकियां करो तो भी खुशहाल जिंदगी है, बुराइयां करो जुल्म करो तो भी खुशहाल जिंदगी है। लोग गालियां देते अपने घरों में देते रहे, कौन सी मुझ तक पहुंचती है? तो ये अच्छे बुरे, ये मोमिन काफिर, ये साले फासिक, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या हुआ? अच्छा, फिर तीसरी बात, अच्छे अमाल करने वालों का चले ये बोले जी हाँ दुनिया में उनको खुशी मिल जाती है, कल्ब में मुसर्रत उनको हासिल हो जाती है। बाद लोग ये बोलते हैं कि वो कल्बी मुसर्रत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जजा है, और जालिम के लिए जो उसका जमीर उसे मलामत करता है वो उसकी सजा है, नेक आदमी के लिए जो उसे कल्बी मुसर्रत मिलती है वो उसकी जजा है, बदला है, और जालिम के लिए जो उसका जमीर उसे मलामत करता है वो उसकी सजा है। तो सवाल ये है कि भाई नेक अमाल करने वालों में बड़ा फर्क है, एक आदमी दरमियाने दर्जे का नेक है, एक उससे ज्यादा नेक है, एक उससे ज्यादा नेक है, बुराई करने वालों में एक छोटा जालिम है, एक बड़ा जालिम है, एक बहुत बड़ा जालिम है। अब हर अव्वल तो अगर नेकी करने वाले को दुनिया में मुसर्रत नहीं मिली तो फिर मतलब ये हुआ कि बदला ही कोई नहीं, और जालिम के जमीर ने उसे मलामत नहीं की तो इसका मतलब उसे सजा कोई ना मिली। नंबर एक। नंबर दो ये कि चले मान लिया कि नेकी करने वालों को खुशी मिली, बुराई करने वाले को, जुल्म करने वाले को उसके नफ्स ने मलामत की, मान लिया। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी ने एक बंदे की इस्लाह की, एक गरीब की मदद की, दूसरे बंदे ने एक लाख क्या एक करोड़ आदमियों की इस्लाह की, जैसे अल्लाह ताला के नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबों लोगों को उन्होंने फैज पहुंचाया। अच्छा, फिर उनके बाद उनके जो सहाबाए किराम है करोड़ों लोगों को फायदा दिया, ईमान पहुंचाया, अच्छे अखलाक सिखाए, अच्छे अमाल बताए, जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाया। एक तरफ मिसाल के तौर पे एक आम छोटा सा मुबल्लिग है, उसने भी थोड़ी बहुत कोशिश करके एक आध बंदे को राह हिदायत दिखाई, ये एक आध को हिदायत देने वाला भी दिल में खुश है, और जिनसे करोड़ों को फैज पहुंचा, ना खत्म होने वाला फैज पहुंचा, वो भी खुश है। तो फिर दोनों के सिले में क्या फर्क हुआ? होना तो ये चाहिए कि जिसने थोड़ा नेक अमल किया, थोड़ा लोगों को फायदा पहुंचाया, उसको थोड़ी जजा मिले, जिसने उससे 100 गुना लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाया उसको 100 गुना जजा मिले, जिसने लाख गुना ज्यादा फायदा पहुंचाया उसको लाख गुना जजा मिले। इधर दूसरी तरफ जालिम की ले लें, एक बंदे ने एक आदमी पे जुल्म किया और दूसरे ने 1000 पे जुल्म किया, तीसरे ने पूरे मुल्क पे जुल्म किया, चौथे ने जनाब कोई बहुत बड़ा जो है वो जंग उसने बर्पा कर दी, करोड़ों लोगों को मार दिया, जैसे जंगे अजीम अव्वल और दुम के अंदर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ, करोड़ों लोग मर गए। तो अब जिन लोगों ने करोड़ों को मार दिया अगर उनका जमीर भी मलामत कर रहा है, और जिसने एक बंदे को मारा उसका जमीर भी मलामत कर रहा है, तो बताइए कि इनकी बुराई का जो इतना डिफरेंस है, एक एक करोड़ को मारने वाला दूसरा एक बंदे को मारने वाला, तो दोनों को सिर्फ इतनी सी सजा। हालांकि बाद औकात जिसको मार दिया उसके पीछे पता नहीं उसके खानदान का क्या बना, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, रुल गए, पिस गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिंदगी उजड़ गई उनकी, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हो गया। तो हर जालिम को और हर बुरे को उसकी बुराई का पूरा पूरा बदला इस दुनिया में नहीं मिलता। एक बंदा एक को कत्ल करे उसको फांसी चढ़ा दो, एक बंदा 100 को कत्ल करे उसको भी फांसी चढ़ा दो, तो भी सजा तो दोनों की एक हो गई, एक को मारने वालों को भी आपने फांसी दी और 1000 को मारने वालों को भी आपने यही किया, तो दोनों की सजा में फर्क क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जुर्म एक बराबर है। हालांकि अक्ल कहती है कि एक की सलाह करने वाला और 1 लाख की सलाह करने वाला बराबर नहीं, एक पर जुल्म करने वाला और एक लाख पर जुल्म करने वाला बराबर नहीं। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों का बदला कैसे बराबर हो सकता है? जब दोनों का बदला और सजा और जजा बराबर नहीं हो सकते तो सवाल यह है कि इस दुनिया में तो हम यही देख रहे हैं कि इस दुनिया में जालिम को उसके जुल्म की पूरी सजा नहीं मिलती और नेकी करने वाले को उसके नेक अमाल का पूरा बदला नहीं मिलता। वो सारी जिंदगी इबादत में गुजार दिया, वो सारी जिंदगी लोगों का भला करता रहा, कोई बदला नहीं मिला। जालिम पूरी जिंदगी जुल्म करता रहा, कोई बदला नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा फासिक फाजिर, नेक होना बद होना सब बराबर, अच्छा होना बुरा होना सब बराबर हो गया, मोमिन होना काफिर होना सब बराबर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में नेक को जो सिला मिला जरूरी नहीं कि उसको पूरा मिले, और जालिम को जो उसके जुल्म का बदला मिला जरूरी नहीं कि उसको मिले या उसको मिले तो पूरा मिले। क्योंकि दुनिया में किसी की जान अगर ली जा सकती तो एक ही मरतबा, ये नहीं हो सकता कि 100 बंदों को कत्ल करने के जुर्म में उसको 100 मरतबा आगे से मार दिया जाए, वो तो मरेगा एक ही मरतबा। तो फिर ये बदला कहाँ होगा? तो अक्ल तकाजा करती है, इंसान की अक्ल तकाजा करती है कि कोई ऐसा दिन होना चाहिए, कोई ऐसा जहान होना चाहिए, कोई ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां हर बंदे को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। जिसने एक की सलाह की उसको उसके मुताबिक बदला हो, जिसने एक करोड़ की सलाह की उसको उसके मुताबिक बदला दिया जाए, जिसने एक पे जुल्म किया उसको उसके मुताबिक बदला हो, जिसने एक लाख पे जुल्म किया उसको उसके मुताबिक बदला हो, जिसने छोटा जुल्म किया उसकी छोटी सजा हो, जिसने बड़ा जुल्म किया उसकी बड़ी सजा हो। तो ये अक्ल का तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर यही बयान फरमाया कि अगर हम क्यामत बरपा ना करें और क्यामत के दिन लोगों का यूं हिसाब ना लें और नेक बंदे के एक एक अमल पे उसको पूरी पूरी जजा ना दें और फजल से बड़ा कर ना दें, फजल का मामला तो चले जुदा है लेकिन एक एक आदमी के एक एक नेक अमल की पूरी पूरी जजा ना दें और बुरे के बुराई की पूरी पूरी सजा ना दें, तो फिर फरमाया इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने ईमान वालों को और काफिरों को बराबर कर दिया, हमने नेकों को और मुफसिदीन को फसाद बर्पा करने वालों को बराबर कर दिया, हमने मुत्तकीन को और फासिको फाजिर लोगों को बराबर कर दिया। तो ये अक्ल के खिलाफ, ये अक्ल के खिलाफ है कि मोमिनों काफिर बराबर हो जाएं और सालेहो फासिक बराबर हो जाएं और मुसलिहो मुफसिद बराबर हो जाएं। तो ये जो हमारा पूरा अच्छे और बुरे का फर्क है ये खुद तकाजा करता है कि हमारे इस दुनिया के आमाल का पूरा पूरा बदला कहीं मिले। अब वो पूरा पूरा बदला कहां मिलेगा? उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौमल हिसाब, मालिकी यौमिद्दीन। वो यौमिद्दीन है, वो जजा का दिन है, वो बदले का दिन है, वो हिसाब का दिन है। वहां आमाल का हिसाब किया जाएगा, वहां आमाल का बदला दिया जाएगा। तो वो बदले का दिन हमारी अक्ल का तकाजा है कि वो दिन आए और उस दिन नेकों को उनके आमाल का बदला मिले, बुरों को उनकी बुराई का बदला मिले। फिर अब उसके साथ अल्लाह ताला के फजल की सूरतें हैं और वो फिर एक पूरा जहान है, उसके रहमान होने का, रहीम होने का वो मामला जुदा है। लेकिन एटलीस्ट कम अज कम मोमिनो काफिर का और मुसलिहो मुफसिद का जो फर्क है वो कहीं ना कहीं जाहिर होना चाहिए, जालिमो आदिल का फर्क कहीं जाहिर होना चाहिए उनके बदले के एतबार से, और वो क्यामत के दिन है। तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क्या हम ईमान वालों को और अच्छे अमाल करने वालों को जमीन में फसाद बर्पा करने वालों के बराबर कर दें? क्या हम खुदा से डरने वालों को खुदा के नाफरमानों के बराबर कर दें? नहीं। मुत्तकीन और फाजिरीन दोनों जुदा जुदा हैं, मोमिनीन और काफिरीन दोनों जुदा जुदा हैं, सालिहीन और फासिकीन और मुफसिदीन जुदा जुदा हैं, दोनों जुदा जुदा हैं, दोनों का बदला भी जुदा जुदा होगा। अब यहां पर एक दूसरी बात की तरफ मैं कुछ इशारा करूंगा कि यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या हम ईमान वालों को और अच्छे अमाल करने वालों को जमीन में फसाद बर्पा करने वालों जैसा कर दें, क्या मुत्तकीन को फाजिरों जैसा कर दें? ऐसी आयात में आमतौर पर जब ईमान के मुकाबले में फसाद या तकवा के मुकाबले में फजूर का तस्करा होता है, फिस्को फजूर का, तो उसमें ईमान और कुफ्र मुराद होता है। लेकिन इस तरह की आयात से बुजुर्गा ने दीन इबरत भी हासिल करते थे, नसीहत भी हासिल करते थे, और इन आयतों को पढ़ के डरते भी थे कि ईमान वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ हा करोड़ शुक्र है کہ ہم ایمان والے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، والدین کی اطاعت ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسی کی خیر خواہی کرنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے، کیا ہمارے زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کی عادت ہے، کیا ہم لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، کیا لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، کیا لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا یہ اعمال صالحہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں یا نہیں؟ اور کیا ہم زمین میں فساد برپا کرنے والے تو نہیں؟ کیا ہماری وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے تو نہیں ہوتے؟ کیا ہماری وجہ سے رشتہ داروں میں دوریاں تو پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہماری وجہ سے دوست ٹوٹ تو نہیں جاتے؟ کیا ہماری وجہ سے لوگ آپس میں دشمنیاں تو نہیں پال لیتے؟ کیا چغلی کے ذریعے ہم ایک کو دوسرے سے لڑاتے تو نہیں ہیں؟ کیا اس طرح کے جو ہے وہ حرکتوں کے ذریعے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کا سبب تو نہیں بنتے؟ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کون سے، اعمال صالحہ والے ہیں یا ہم فساد فی الارض کرنے والے، دہشت گرد ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، ڈکیتیاں کرنے والے ہیں، لوگوں کی عصمتیں پامال کرنے والے ہیں، یہ سب مفسدین فی الارض ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو موبائل چھینتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو لوگوں کے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، جو لوگوں کی پراپرٹیاں چھینتے ہیں، یہ سب زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو معاذ اللہ کیا ہم ایسے تو نہیں؟ کیا ان میں سے تو کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پی جانی؟ دوسری طرف تقوی اور فجور ہے، وہ اگرچہ اصل یہاں پر ایمان اور کفر ہی کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین قرآن پاک کے جو ظاہر الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے بھی خوف خدا کا مظاہرہ کرتے تھے، تو ہمارے اندر تقوی ہے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہماری نگاہیں بد نگاہی سے بچتی ہیں، ہمارے کان حرام سننے سے بچتے ہیں، ہماری زبان فحش بولنے اور گالی دینے سے رکتی ہے، ہمارے ہاتھ ظلم کرنے سے رکتے ہیں، کیا ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں؟ یا معاذ اللہ ہماری زندگی میں فسق و فجور ہے، ہماری نگاہیں حرام دیکھتی ہیں، ڈرامے فلمیں فحش، ہمارے کان حرام سنتے ہیں، گانے باجے اور دوسری فحش اور گندی باتیں، ہماری زبان وہ نہ جانے کن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، غیبت چوری جھوٹ بہتان الزام تراشی گالی گلوچ اس کے اندر مبتلا ہے، ہمارے پاؤں گناہ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے اعضاء گناہ کے مرتکب ہیں، ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ کی حفاظت نہیں، ہماری نگاہوں اور کانوں کی حفاظت نہیں، ہمارا دل گندے خیالات کو پالتا ہے، یہ سب فسق و فجور ہے۔ تو کیا ہم تقوی والے ہیں یا فسق و فجور والے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہماری عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سیکھیں۔ تو ہم یہ آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ ہمارا شمار کن میں ہے؟ صالحین کے اندر ہے یا فاسقین کے اندر ہے؟ متقین کے اندر ہے یا فاجرین کے اندر ہے؟ اپنے اپنے اعمال پر غور کریں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی حالت کو بدل دے، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، ہمیں متقین میں شامل کرے، فاجروں کے اندر ہمیں شامل نہ کرے۔ اب اللہ تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت قائم ہوگی، مفسد اور مومن کا فرق ہوگا، متقی اور فاجر کا فرق ہوگا، یہ فرق کس بنیاد پہ ہوگا؟ متقی کون ہے، فاجر کون ہے، مومن کون ہے، مفسد کون ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنا دین عطا کیا، وہ دین اللہ تعالی کے نبی لے کر آئے، اللہ تعالی نے اپنی کتابیں نازل کی اور ان میں آخری کتاب اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی قرآن۔ تو اب وہ جو تقوی سیکھنا اور فجور کی پہچان کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سکھایا، تو اب اس کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائے، کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، یہ خدا کی نازل کردہ، یہ خدا کا کلام ہے، खुदा की नाजिल करदा किताब है, मुबारकुन बरकत वाली है। इसको पढ़ने वाले को बरकतें मिलती हैं, इसको समझने वाले को बरकतें मिलती हैं, इस पे अमल करने वाले को बरकतें मिलती हैं, इसे दूसरों को सिखाने वाले को बरकतें मिलती हैं, हत्ता के इसे देखने और चूमने वालों को बरकतें मिलती हैं। तो ये बड़ी बरकत वाली किताब है। इसके नुजूल का मकसद क्या है? अल्लाह तआला ने दो मकसद बयान किए। एक तो फरमाया कि तदब्बुर, गौर व फिक्र करना, और दूसरा फरमाया तज़क्कुर, नसीहत हासिल करना। तदब्बुर और तज़क्कुर में फ़र्क है। तदब्बुर है कुरान में गौर व फिक्र करना और इससे अख़्ज़ मसाइल, अख़्ज़ उलूम और इस तरह बहुत सारे जो अख़्ज़ करने की चीज़ें हैं वो करना। तज़क्कुर है उससे नसीहत हासिल करना। तदब्बुर और तज़क्कुर जो है, तदब्बुर तो उलमा का काम है कि उलमा कुरान के अंदर तदब्बुर करें, क्योंकि तदब्बुर के लिए बहुत से उलूम की हाजत है। कुरान अरबी है। अब सीधी सी बात है कि जिसको अरबी नहीं आती तो कुरान क्या समझेगा, बल्कि उसको तज़क्कुर भी हासिल नहीं हो सकता। जिसको अरबी नहीं आती तो उसको वो तज़क्कुर भी हासिल नहीं कर सकता, दूसरी ज़बान के अंदर इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तदब्बुर के लिए बहुत से उलूम हैं जिनकी हाजत है। उनके बाद कुरान के मआरिफ और कुरान की गहराइयाँ और कुरान की मारिफतें हासिल होती हैं। लेकिन तज़क्कुर जो है, नसीहत हासिल करना, ये तो हर बंदा जो कुरान पढ़ता है और उसके साथ, जैसे उर्दू पढ़ने वाला भी अगर उसका एक अच्छा उर्दू तर्जमा पढ़ता है, जैसे आला हजरत अली रहमा का कंजुल ईमान शरीफ है जो ये पढ़ता है, उसके साथ कोई मुख्तसर सा हाशिया भी पढ़ता है, तो जहाँ थोड़ा सा इश्काल होगा वो दूर हो जाएगा, वरना खुद आयात उसको बता देगी। जैसे अभी हमने जो पीछे आयतें पढ़ी हैं, अब उसमें अल्लाह ताला के नबियों का तस्किरा हुआ, आगे भी अल्लाह ताला के नबियों का तस्किरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आएगा, फिर उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आएगा। उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अल्लाह ताला की तरफ ही लौ लगा के रखते थे, अल्लाह ताला के कैसे वो इबादत गुजार बंदे थे। तो अब ये वो बातें हैं कि जिनसे बंदे को सीधी सीधी नसीहत मिलती है। क्यामत के हवाले पढ़ते हैं, क्यामत का दिन होगा, लोग कब्रों से निकलेंगे, खुदा की बारगाह में जाएंगे, आज़ा बोलेंगे, नामा अमाल हाथों में दिया जाएगा, जिस जगह पे गुनाह किया होगा वो ज़मीन बोलेगी। तो ये सारा क्या है? जब बंदा ये पढ़ता है तो उसके दिल पे खौफ तारी होता है, उसको नसीहत मिलती है। ये है तज़क्कुर, नसीहत हासिल करना। जन्नत का तज़किरा पढ़ता है, जन्नत की नेमतें पढ़ता है, जैसे अभी पिछली सूरत के अंदर ही, सूरह सौफ़ात के अंदर ही हमने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, कुरान पाक के अंदर था जिसको बयान किया। तो अब वो पढ़ते हुए बंदे के दिल में एक शौक पैदा होता है इबादत का, ईमान कामिल का, आमाले सालेहा का, गुनाहों से बचने का। जहन्नम का तस्किरा पढ़ता है तो आदमी का दिल डरता है, खौफ सदा होता है, बुराइयों से बचने का जहन बनता है। तो कुरान से नसीहत मिलती है। जो इसको समझ के पढ़ता है और जहन होता है कि मैंने इस पर अमल करना है, तो उसका दिल नसीहत हासिल करता है। और जिन्हें उलूम पर दस्तरस हासिल है, वो जब इसमें गौर करते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो तदब्बुर है। हर बंदा कुरान को पढ़कर नसीहत तो हासिल कर सकता है, लेकिन उसके उलूम की गहराई तक जाना और उलूम तक रसाई ये आसान नहीं। तो तदब्बुर आयात उलमा का काम और तज़क्कुर उलमा और अवाम दोनों का काम। ये नहीं है कि उलमा सिर्फ तदब्बुर करें, अवाम सिर्फ तज़क्कुर करें, यानी अवाम सिर्फ नसीहत हासिल करें और उलमा सिर्फ गौर व फिक्र करें। नसीहत हासिल करना उलमा और अवाम दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि इल्म तो हासिल करें बेअमली चलाते रहें, नहीं, इल्म के साथ अमल। और अवाम कम अज़ कम जो नसीहत हासिल करना और जो बुनियादी चीज़ें सीखना है वो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन तदब्बुर का मतलब ये नहीं होता कि तदब्बुर कुरान नाम रख ले और आप पढ़ते रहो जो मर्जी, नहीं। नाम किसी शय का नाम तदब्बुर रख देने से तदब्बुर नहीं हो जाता। इस तरह तो जो गैर मुस्लिम ने भी कुरान की तफसीरें लिखी, इस तरीके से तो गुमराह फिरके वो भी कुरान की तफसीरें लिखते हैं, हत्ता के ख़त्म नबूवत के मुनकरीन ने भी कुरान की तफसीरें लिखी हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने तदब्बुर किया है, उन्होंने तदब्बुर ही गलत किया है और जो पढ़ेगा उसका तदब्बुर भी ख़राब कर देंगे। तो जो सहीहुल अकीदा उलमा हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, औलिया किराम को मानने वाले हैं और सलफ़ सालहीन को मानने वाले हैं, जो इनके ग़ुलाम बनते हैं, उनके तदब्बुर का एतबार है और उनका तदब्बुर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान से तज़क्कुर भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और तदब्बुर करने की भी तौफीक अता फरमाए। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला की एक और नेमत, और वो है उनके साहिबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے، ارشاد ہوتا ہے وَوَحَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ أَوَّابِ، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا، داود علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، باپ بھی اللہ کے نبی، بیٹے بھی اللہ کے نبی، باپ بھی بادشاہ حکمران، بیٹے بھی بادشاہ حکمران، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دونوں نعمتوں سے نوازا، ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے، یعنی وہ بندہ کتنا اچھا بندہ ہوگا جس کو اس کا رب فرمائے کتنا اچھا بندہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو فرماتا ہے کتنے اچھے بندے ہیں میرے، بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، تو ہر کام میں رجوع، نماز میں، عبادت میں تو رجوع ہوتا ہی ہے، اول تو نماز پڑھنا ہی رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، جو نہیں پڑھتے وہ اس اعتبار سے بھی رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اس سے ہٹ کر اپنے زندگی کے جملہ معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے جملہ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے کہ بندے کے ذہن میں ہو کہ مجھے حکم الہی پر عمل کرنا ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں حکم الہی کیا ہے، میں نوکری کر رہا ہوں اس میں حکم الہی کیا ہے، میں شادی کر رہا ہوں اس میں حکم الہی کیا ہے، طلاق کا معاملہ ہو گیا اس میں حکم الہی کیا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے حکم الہی کیا ہے، پڑوسیوں سے تعلق ہے حکم الہی کیا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اب جو بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے اچھے انداز میں ملتا ہے، حلال کھاتا ہے، اپنی نوکری پہ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے نوکری کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نوکری کے اندر ڈنڈی مارنا، تو اب کاروبار میں ڈنڈی مارنا، تو اب جو بندہ صحیح طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولا، بددیانت نہیں کر رہا، خیانت نہیں کر رہا، جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچ رہا، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ گھر آیا، گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی سخت کلامی ہو گئی، تو اس میں اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، تو یہ ہے انہ اواب، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو سر تپا مجسم ہوتے ہیں رجوع اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے، ہمیں بھی اسی سے درس حاصل کرنا، ہماری صبح و شام، ہمارے دن رات، ہمارا ظاہر و باطن، ہماری خلوت و جلوت، ہمارا دیکھنا سننا بولنا، ہمارا پکڑنا چلنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو یہ انہ اواب کی عملی تفسیر بن جائے گی۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جب سلیمان کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت عمدہ، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر سلیمان نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک معاملہ بیان کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی تھوڑا سا معاملہ ہے، اصل میں ہوا یوں ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن پچھلی قوموں میں کچھ قومیں ان دونوں نبیوں کی دشمن تھیں، تو وہ ان پر الزام تراشی، ان کے متعلق معاذ اللہ بہتان لگاتے تھے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، عمدہ نسل کے، تیز دوڑنے والے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبت ہے، फिर आपने उनको दौड़ाया हत्ता के वो निगाहों से छुप गए, फिर उन्हें हुक्म दिया वापस लाओ, फिर उनको हाथ फेरने लगे। अब ये वाक्या कुछ और है, यानी वाक्या यूं है जैसे मैंने बयान किया, लेकिन इसको ताबीर करने वालों ने उल्टा ताबीर किया। जो गलत इसको लेने वाले थे उन्होंने गलत लिया, और हत्ता के वो इसराइलियात यानी इसराइली जो रिवायात हैं वो हमारी भी यानी मुसलमानों की किताबों में भी आ गई, और बड़े बड़े बातिल किस्म के वाकयात यहाँ पर लिखे हुए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर घोड़ों की मोहब्बत गालिब आ गई, आपकी नमाज कजा हो गई, फिर आपने घोड़ों को बुलाया, उनको मारना शुरू कर दिया, कत्ल कर दिया, टांगे काट दी, गर्दने काट दी। माद अल्लाह, अल्लाह ताला के नबी ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि उनकी जो है वो माल की मोहब्बत को खुदा की याद पर तरजीह दे दें, उस माल की मोहब्बत में उनकी नमाज कजा हो जाए, और फिर उसके बाद वो घोड़ों पर जिनका कोई कसूर ही नहीं है उनको कत्ल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातिल वाकयात हैं जो लिखे गए हैं बहुत सारी किताबों के अंदर, और ये इसराइलियात हैं, ये पिछली कौमों के जो खबीस लोग थे ये उन्होंने इस तरह के वाकयात बनाए। असल ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पेश किए गए, बड़े उम्दा नस्ल के घोड़े, तेज दौड़ने वाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इन घोड़ों से मोहब्बत है, फरमाया मुझे खैर से मोहब्बत, खैर से मुराद है माल, और माल से मुराद है घोड़े, क्योंकि घोड़े सवारियां ये भी एक माल थे। आप फरमाते हैं मुझे माल की मोहब्बत यानी घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई, क्यों? अन जिक्री रब्बी, अन ये सबबियत के लिए है, सबब बयान करने के लिए, मुझे घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिए। रब की याद के लिए क्यों? इसलिए कि ये घोड़े जिहाद में इस्तेमाल होते थे, अल्लाह के नबी थे, जिहाद फरमाते थे, और आपने काफिरों के मुल्कों में इस्लाम फैलाया तो इन्हीं घोड़ों के जरिए तो जाते थे, तो वो जिहाद घोड़ों पे होता था। तो चूंकि ये खुदा का नाम और खुदा का कलिमा और खुदा का दीन फैलने के अंदर मुआविन है, तो फरमाया मुझे इस वजह से इनसे मोहब्बत है, मुझे इन घोड़ों से मोहब्बत है अपने रब की याद की वजह से। वो रब की याद क्या है? बसूरत जिहाद, जो खुदा का दीन फैलता है, खुदा का कलिमा फैलता है, खुदा की जो दावत है तौहीद की वो फैलती है, तो फरमाया मुझे इस वजह से इनसे मोहब्बत है। उसके बाद आपने फरमाया इनकी दौड़ लगाओ, दौड़ाओ इनको, जैसे घोड़ों को दौड़ाया जाता है ताकि उनकी एक प्रैक्टिस भी हो और पता चले कौन ज्यादा तेज रफ्तार है। अब दौड़ लगाई तो नजरों से वो औजल हो गए, जब दौड़ खत्म हुई तो फरमाया मेरे पास लेके आओ। जब लेकर आए तो जैसे घोड़ों का मालिक होता है ना, वो घोड़ों से बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी गर्दन पे, उन पे गर्दन पे जो बाल होते हैं उन पे हाथ फेरता है, उनकी पीठ पे हाथ फेरता है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उन घोड़ों की जो है वो कारकर्दगी पर और उनकी दौड़ पर और उनकी जो है वो कुव्वत और ताकत पे खुश होके एक किस्म का उनके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार फरमा रहे। तो वो है फताफिका मसहम बिसूख वल आनाक, उनकी पिंजलियों पर और उनकी गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। तो ये एक मोहब्बत का इजहार था कि ये सल्तनत के घोड़े हैं, सल्तनत इस्लाम के घोड़े हैं जो इस्लाम के फैलाने के अंदर काम आते हैं। तो ये है वाकया। अब इसको न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसको क्या से क्या कर दिया अलमान वल हफीज। तो अब इस वाकया से जो चीजें सामने आती हैं उनमें चंद एक चीजें अर्ज करता हूं, वैसे तो इस पर बड़ा तफसीली कलाम हो सकता है। पहली बात तो ये, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये घोड़ों से मोहब्बत है। अब घोड़े माल है, फरमाया मुझे माल से मोहब्बत, लेकिन क्यों? अच्छी नीयत के लिए, अपने रब की याद की वजह से। तो पता चला कि अच्छी नीयत बड़ी अजीम शय है, अच्छी नीयत से माल से मोहब्बत भी अच्छी है, अच्छी नीयत से माल से मोहब्बत भी अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मुझे माल पसंद है, क्यों? ताकि मैं उस माल से हज करूं, मैं उमरा करूं, मैं गरीबों की मदद करूं, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं, मैं अपने बहन भाइयों की खिदमत करूं, मैं अपने रिश्तेदारों की खिदमत करूं, मैं अपने पड़ोसियों की खिदमत करूं, मैं जो मुझे गरीब नजर आए मैं उसकी मदद कर दूं, मैं लोगों की परेशानियां हल करूं, मुझे इस वजह से माल से मोहब्बत है। तो बताइए कि ये मोहब्बत बुरी है? ये तो बहुत अच्छी है। ये माल से नहीं, माल से की जाने वाली इबादतों से मोहब्बत है। तो अच्छी नीयत बहुत अच्छी चीज है, अच्छी नीयत का जहन बनाना चाहिए ताकि हम खाना खाएं, खाना इसलिए खाएं ताकि हमारे बदन में कुव्वत हो, नमाज पूरी तवज्जो से पढ़ सकें, दीन का काम पूरी तवज्जो से कर सकें, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं इसलिए कमाएं कि घर वालों के हुकूक अदा करें, माल कमाएं ताकि गरीबों की मदद करें और वाकई करें। तो अच्छी नीयतों के साथ मुबाह काम भी नेकी के काम बन जाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वही इरशाद फरमाया। और मोमिन की जिंदगी यही होती है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये घोड़ों को खुद देखना, ये इस बात की तरफ भी जब वो रहनुमाई करता है कि जो सल्तनत का फरमा रवा है वो उमूर सल्तनत को खुद भी देखे। ये नहीं है कि सिर्फ वजीरों मुशीरों पे छोड़ दिया, जाओ जाओ करते रहो और मुझे आगे सिर्फ रिपोर्ट दे देना, नहीं, बहुत सारे मामलात में खुद भी दखल दे। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े जो बड़ा एक मेन उसके अंदर किरदार रखने वाले हैं इलाए कलिमतुल्लाह के अंदर, खुदा का दीन फैलाने के अंदर, तो आप खुद उनके पास जा रहे हैं, देख रहे हैं, दौड़ लगवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इस तरह अपने उमूर सल्तनत को देखा जाए, मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जाकर देखा जाए। बैठे बैठे रिपोर्ट लेते रहेंगे तो फिर रिपोर्टें जैसे वजीर बना के देते हैं वो पता ही है। तो खुद उमूर सल्तनत की निगरानी करे, चौकस रहे, चाको चौबंद रहे, पूरी निगाह रखे, सही निगरान बन के दिखाए। नीचे वाले रियाया हैं, ये उनका राई है, राई से रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकया के अंदर ये भी असबाक मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान का फ़हम अता फरमाए, अपने प्यारे प्यारे नबियों अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।